ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय और 19वां श्लोक। यहाँ पे लिखा है, आप रिपीट कर सकते हो। अस्यानुभावं भगवान् वेद घूये तमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो
नृपा।
कोई रिपीट करेगा?
अस्यानुभावं भगवान्
वेदः गुह्यतमं शिवः
देवर्षिः नारदः साक्षात्
भगवान् कपिलो नृपः।
क्या आप लोग पढ़ते क्यों नहीं? मतलब तो ऐसे तो पढ़ना आएगा ही नहीं। मिस्टर बेरा, यू कैन रीड, ट्राई टू रीड। ओके, हम शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। अस्य उनकी अनुभावं
महिमा
भगवान् सर्वशक्तिमान् वेद जानते हैं। गुह्यतमं अत्यंत गोपनीय शिव जी देवऋषि देवताओं में महान ऋषि नारद साक्षात प्रत्यक्ष भगवान कपिलः कपिलमुनि नृपा हे राजन। अनुवादात् श्रीपाद द्वारा, हे राजन, शिवजी, देवर्षि, नारद तथा भगवान के अवतार कपिल मुनि, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। सो मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, बट उससे पहले आई जस्ट ऑफर एंड देन इट्स वेरी नाइस तात्पर्य, बहुत अच्छा पापट है। ओम अज्ञानात्मनस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार शेष सुतात्पर्य में प्रभुपाल लिख रहे हैं, भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं। ये जो शब्द आ रहा है अस्य अनुभावं भगवान, अनुभाव को प्रभुपाल ट्रांसलेट कर रहे हैं महिमा। प्रभुपाल लिख रहे हैं कि भगवान के सारे भक्त भाव हैं। भगवान के भक्तों को भी भाव बोलते हैं। जिस प्रकार भगवान की महिमा है, भगवान की सबसे बड़ी महिमा तो भगवान के भक्ति है। वैसे तो हमने भगवद्गीता में 10वें अध्याय में पढ़ा है भगवत ऐश्वर्य। भगवान की महिमा है कि वो सुंदर हैं, ज्ञानवान हैं, सर्वव्यापी हैं, ऐश्वर्यवान है। मगर अगर भगवान से पूछो कि भगवान सबसे बड़ा ऐश्वर्य, सबसे बड़ी महिमा कौन है, तो वो क्या उत्तर देंगे? कहेंगे मेरे भक्त। ऐसे शिला प्रभुपाद से पूछा था ना कि प्रभुपाद पता नहीं कहाँ एयरपोर्ट पे आए थे अमेरिका में। वहाँ पे रिपोर्टर ने आके पूछा कि प्रभुपाद आप सेंट हैं इंडिया से, कोई मैजिक करके दिखाइए। एक इंडियन सेंट्स मीन्स मिस्टिक्स। तो प्रभुपाद ने कहा, देख रहे हो सारे फॉरनर्स, तो सारे प्रभुपाद आए थे, तो जैसे ही उतरे थे प्लेन से तो सारे के सारे फॉरनर दंडवत वहीं पे एयरपोर्ट पे लेटे हुए थे सब। मैंने देख रहे हो ये सारे फॉरनर्स मेरे सामने लेट रहे हैं, जो पूरे नास्तिक थे, जो पूरे हिप्पी थे। इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है? किसी भी सेंट से इंडिया के ये करा के दिखा दो कि दुनिया के बड़े बड़े नास्तिक और फॉरनर्स और इतने एडवांस लोग एक एक भक्त के सामने झुक रहे हैं, इससे बड़ा कोई मैजिक हो ही नहीं सकता। सो प्रभुपाद ने भी बोला है कि मेरा सबसे बड़ा एसेट मेरे डिवोटीज हैं। प्रभुपाद में डिवोटीज को स्टूडेंट्स बोलते थे, स्टूडेंट्स और डिसाइपल्स। सो भगवान इसलिए कह रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, क्योंकि उनमें भगवान के लिए भाव होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। सो भगवान के भक्त भाव क्यों है? क्योंकि वो भगवान के भाव समझते हैं। इसलिए यहां पे शब्द आ रहा है अस्य अनुभावम भगवान। सो अनुभाव जो शब्द है वो एक्चुअली एक टेक्निकल शब्द है। रूपा गोस्वामी अपने भक्तिरसम सिंधु में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अनुभाव। प्रभुपाद इसके बारे में एक्सप्लेन करें आगे, मगर अगर जनरल मतलब देखा जाए अनुभाव का तो मतलब सेवा, प्रेममयी सेवा। भाव से जब सेवा की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अनुभाव। और वो कहाँ कहाँ रहती है? वो भक्तों के हृदय में रहती है। बाहर थोड़ा ना है, मंदिर के ईंट पत्थरों में थोड़ा ना है, या खाने में थोड़ा ना है, वो तो भगवान के भक्तों के हृदय में। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। अस्य अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवा। वेद मतलब जानना, गुह्यतमम मतलब सीक्रेट। डिवोटीज एक सीक्रेट जानते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं जिस प्रकार भगवान के कितने सारे इमोशंस हैं, नहीं भगवान के कितने सारे डिजायर्स हैं। अनुभावों का मतलब एक और वो चेष्टाएं समझते हैं, चेष्टाएं मतलब इंटेंशंस, संकल्प। क्योंकि भाव की उत्पत्ति कहां से होती है? संकल्प से तो होती है भी। पहले मैं सोचता हूं कि भी मुझे वो लड़की अच्छी लग रही है, फिर उस विचार के बाद फिर हम कांटेक्ट करते हैं, भावनाएं आती है। नहीं, अगर विचार ही नहीं होगा मिलने का तो भावनाएं क्या आएंगी? और उस भावना में भी जब किसी व्यक्ति के लिए भावनाएं होती है तो केवल एक ही विचार होता है कि उसके पास रहूं, है नहीं, उसे मिलूं। तो इस विचार से भावनाएं कि मैं उससे मिलूंगा, और उस भावनाओं से विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उससे मिलूंगा। सो वो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए अनुभाव का मतलब होता है चेष्टाएं। चेष्टा आपकी क्या है? चेष्टा है, भगवान की चेष्टा है कि वो अपने भक्तों पे कृपा करें, और भक्तों की चेष्टा है कि वो अपने भगवान की हमेशा सेवा करते रहें। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं जिस प्रकार भगवान के अन्य अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, भगवान असंख्य अवतार लेते हैं लोगों पे कृपा करने के लिए। उनकी एक ही चेष्टा है कृपा करना, और कृपा करने के लिए कभी रामलीला करेंगे, कभी कृष्ण लीला करेंगे, कभी वामन अवतार, कभी नरसिंह अवतार। अब देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट हैवी। देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि भगवान अलग अलग पास टाइम्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? नरसिंह भगवान का पास टाइम क्यों हुआ? उसके बड़े सारे रीजंस हैं। मत्स्य अवतार क्यों हुआ? क्योंकि भगवान को ऋषि मुनियों और वेदों की रक्षा करनी थी। वामन देव का अवतार क्यों? क्योंकि भगवान को देवताओं की रक्षा करनी थी। परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि भगवान को इस लोक की रक्षा करनी थी गंदे क्षत्रियों से उनको मारकर। मगर अलग अलग कारण है, मगर उसके पीछे एक ही कारण है, वन कॉमन फैक्टर है कि भगवान जीवों पर कृपा करना चाहते हैं। तो इसलिए असंख्य अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान के असंख्य अवतार हैं, इसलिए भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं। अलग अलग अवतार में भगवान अपने अलग अलग डिवोटीज को लेकर आते हैं जो अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट है। नहीं, अब मत्स्य अवतार में कोई अर्जुन को लेकर थोड़े ना आएंगे, वहां तीर चलाने की जरूरत ही नहीं है, वहां क्या करेंगे। या नरसिंह अवतार में पांडवों की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही सबको चीर फाड़ देते। हाँ, राम अवतार में बंदरों की जरूरत थी, कृष्ण अवतार में पांडवों की जरूरत है, परशुराम अवतार में किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अकेले ही सफिशियंट है, पूरे करोड़ों करोड़ों लोगों को अकेले मार डाला परशुराम जी ने। सो बुद्ध अवतार में किसी की, बुद्ध अवतार में किसकी जरूरत है, बुद्ध अवतार में तो बुद्ध भगवान शांति ओम शांति का उपदेश दे रहे नहीं। सो बुद्ध अवतार में उनके अलग अलग डिसाइपल्स है और डिफरेंट डिसाइपल्स है जो उनकी इस तरह से सेवा कर रहे थे नहीं। सो इसलिए भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी होते हैं क्योंकि असंख्य लीलाएं होती हैं, उसमें अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग नीड है लोगों की। अब अर्जुन अगर बुद्ध अवतार में आता तो प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि अर्जुन तो लड़ना धड़ना, और भीम आ जाते तो वो तो बैठ ही नहीं पाते, या अगर हनुमान जी बुद्ध अवतार में आ जाते तो गंद मच जाता पूरा, वो क्या करते हैं, मतलब कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड बट हिज नेचर इज नॉट लाइक दैट। गौतम बुद्ध क्या, सो उस अवतार में तो ऐसे डिवोटी चाहिए जो शांत है, जो ज्यादा पैशनेट नहीं है, नहीं उस अवतार में, उस अवतार में हमारे जैसे राहुल उस अवतार में नहीं जा सकता, वो पैशनेट है, ही इज रिक्वायर्ड इन मे बी। राम भगवान क्या थी, कृष्ण भगवान क्या, यू नीड टू फाइट, तो बुद्ध अवतार के बाद कौन जाएगा, कौन जाएगा, रियूष 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 तो कृष्ण अवतार का जाएगा, हंसाता रहता है कॉमेडी। सो बुद्ध अवतार के बाद में भी जितेंद्र आ सकता है, ढीलू ढालू थोड़ा है, यह काम चल रहा है, हो रहा है काम, तो वहां पे परफेक्ट फिट है, शांत आराम से बैठे बैठ जाओ चलो। सो डिफरेंट अवतार डिफरेंट रोल्स हैं। सो भगवान चूज कर लेते हैं उसको क्वालिटी के अनुसार, उसको अपनी सेवा में नियुक्त कर लेते हैं अलग अलग अवतार लेकर। सो हर भगवान भी सेटिस्फाइड है, लोग का हित भी हो रहा है, डिवोटी भी सेटिस्फाइड है नहीं, दैट्स अ बेस्ट थिंग। सो ऐसे एक गुरु भी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स लेता है और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवा में नियुक्त कर देता है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी होते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त हैं। तो श्लोक में भीष्म पितामह महान भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, तो कौन कौन से महान भक्तों की चर्चा की है, देवर्षि नारद है नी, शिव जी और कपिल मुनि। सो प्रभुपाद उस पर कमेंट कर रहे हैं अपने पॉपर्ट में कि सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त हैं जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कुमार, कपिल मुनि जिसका चर्चा है, मनु स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह खुद जो बोल, ऑफकोर्स भीष्म पितामह अपना नाम तो लेंगे नहीं कि मैं भी एक महाजन हूँ, मतलब ही इज, इसलिए उन्होंने पूरी लिस्ट नहीं बोली यहाँ पर, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिलीट हिज ओन नेम। एक शुद्ध भक्त अपने आप को कभी भी शुद्ध भक्त नहीं समझता, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी न मानत होवे, तो अपने आप को वैष्णव मानोगे तो आप वैष्णव नहीं हो, दैट्स अ फर्स्ट क्वालिफिकेशन। जनक महाराज सीता के पिता, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज और यमराज जी, तो 12 महाजन है। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक है लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है इस श्लोक में, जो भगवान की महिमा से अवगत है। भगवान की महिमा मतलब अनुभव, भगवान के भाव से अवगत है, भगवान कैसा सोचते हैं, क्या चेष्टाएं हैं, उनका संकल्प क्या है, ये सब भगवान की साइकोलॉजी समझते हैं, वहां का माइंड समझते हैं, और क्योंकि भगवान के भाव समझते हैं इसलिए उस तरह से भगवान की परफेक्ट सेवा कर भी सकते हैं नहीं। किसी की बेस्ट सेवा करने के लिए उसका मन समझना पड़ेगा ना, वरना आप अच्छी सेवा कैसे कर पाओगे। आधुनिक युग में महान आचार्य श्री विश्वा चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है। अब प्रभुपाद अनुभव को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने पर्फेक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर अनुभव है। तो विश्व प्रभुपाद कोट कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में अनुभव का मतलब चेष्टा ही लिख रहे हैं, मैं बताया था विचार, भगवान के विचार क्या है। सो डिवोटीज वेद गुह्यतम मतलब क्या है, सीक्रेट, डिवोटीज भगवान के सीक्रेट विचार समझते हैं, जनरल विचार गीता में जो भगवान ने बता दिया सबको, क्या हो रहा है सो भगवान क्या सोचते हैं, हमारे भी ऐसे होते हैं ना, हमारे को सीक्रेट थॉट्स होते हैं, कुछ जनरल थॉट्स होते हैं, जनरल थॉट्स हम शेयर कर लेते हैं, सीक्रेट थॉट्स हम अपने विश्वसनीय लोगों के साथ शेयर करते हैं, ऐसे वाइफ हो गया, बेस्ट फ्रेंड हो गया। सो भगवान के जनरल थॉट्स कहाँ पढ़ना चाहते हो आप? गीता में, ठीक है, मैं ऐसे सोचता हूँ, ये है, ये तमाम प्रपद्यन्ते जो मेरी शरण लेता है, मैं उसकी उस तरह मदद करता हूँ, समम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सारे जनरल थॉट्स हैं। मगर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये महाजन जो है ये क्या जानते हैं, वेद गुहेत, उनके सीक्रेट थॉट्स जानते हैं, मतलब कहने का मतलब है भगवान के बहुत निकट है वो,
प्लानिंग जानते हैं,
प्लानिंग। तो भगवान के सीक्रेट थॉट्स क्या है, अब ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने पर्पट में, वो गीता में नहीं है, इसीलिए भगवत गीता अंडर ग्रेजुएशन है और भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसलिए प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन में जनरल थॉट्स हैं, ऑर्डिनरी थॉट्स हैं, मतलब भगवान के थॉट्स ऑर्डिनरी नहीं होते, ऑर्डिनरी उस सेंस में नहीं कि ऑर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी उस सेंस में कि सबके लिए साधारण विचार, मगर विशेष विचार गुह्यतमम वो अब बता रहे हैं विश्वाचक्री ठाकुर बता रहे हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त है ना विश्वाचक्री ठाकुर भी, वो भी जानते हैं भगवान को, तो वो बता रहे हैं कि भीष्म पितामह क्या जानते हैं। तो तीन भगवान के गुह्यतमम विचार बता रहे हैं, वैसे तो अनंत विचार होंगे ना गुह्यतमम सीक्रेट थॉट्स, उसमें से तीन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमें तीन थॉट्स बता रहे हैं जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है अगर हम भगवान के निकट पहुंचना चाहते हैं। सो पहला अनुभव बता रहे हैं, विश्वाचक्र ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा या उनकी चेष्टाएं सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती हैं। सो भगवान के सीक्रेट थॉट्स और अनुभव को समझने का एक ही तरीका है, जब आप भगवान की सेवा आनंद और प्रेम से करोगे, वरना भगवान के सीक्रेट विचार हम नहीं समझ सकते। ये तो ऑब्वियस है, नहीं ऑब्वियस है, अगर भगवान की सेवा प्रेम से नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे, हम किसी की सेवा प्रेम से करेंगे तभी तो उसको समझेंगे। सो जो प्रेम भक्त प्रेमी होते हैं भगवान के, जैसे महाजन विश्वाचक्र ठाकुर, वो समझ सकते हैं। सो आनंद भाव आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव किए जाते हैं। सो ऐसे भक्त क्या होते हैं जिनको प्रेम होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं? उनके लक्षण होते हैं जिनमें प्रेम सुवेद है, प्रेम सुवेद समझते हो, स्वेद, जिनमें प्रेम होता है उनके शरीर से पसीना आता है, कंप होता है, रोते हैं, और इन शारीरिक लक्षणों द्वारा पता लगता है कि उनमें भगवान के लिए भावनाएं हैं। कभी कभी डिवोटीज का रंग भी बदल जाता है, श्रील प्रभुपाद का कई बार लोगों ने देखा कि प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे और डिवोटीज आए, डिवोटीज ने नॉक किया, प्रभुपाद खोला नहीं, प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे, उन्होंने झांक के देखा तो प्रभुपाद का पूरा बॉडी कलर ब्लू था, पूरे ब्लू थे। सुरूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, जो स्टेज में होते हैं प्रेम की स्टेज में, उनका बॉडी कलर चेंज हो जाता है, कभी ब्लू आते हैं, कभी पिंक हो जाते हैं। एक डिवोटी तो डरी गया, ये क्या हो गया, ये बस अपने डिवोटी प्रभुपाद डिसाइपल अपना बता रहे थे, कई कई डिसाइपलों ने देखा एक्चुअली ब्लू हो गए पूरे, ऑफकोर्स ऑक्सीजन की कमी से नहीं, बट मतलब हमारे जो एचयूडी थी ना, कौन थे गायनी के, जब मेरी पहली बार क्लास हुई थी तो उन्होंने देखा मैं डिवोटी हूँ, तो उन्होंने कहा तुम कृष्णा डिवोटी हो ना, मैंने कहा, तो कहते हैं एक्चुअली तुम्हारे कृष्णा को तो बचपन से मिथ हेमोग्लोबिनेमिया था, हेमोग्लोबिन कम था इसलिए ब्लू कलर था। दे आर फूलिश पीपल। सो भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों की वृद्धि होती है। तो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि जो जो प्रेम के स्तर पे, उनमें पांच तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। एक होता है क्या कैसे कहेंगे, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थाई भाव। ये जो अनुभाव उसमें से एक है, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थाई भाव। जब स्थाई भाव, जब डिवोशन में आगे बढ़ जाओगे तो ये पांचों के पांचों भाव आ जाएंगे। सिर्फ रोना नहीं आएगा, मैं तो बहुत लंबा चौड़ा भक्त, मुझे आंसू आ रहे हैं, ठीक है आंसू आ रहे हैं, वो तो अनुभव एक एक लक्षण है, बाकी चारों का है
अनुभव,
सो बाकी चारों मिला के फिर रस उत्पन्न होता है, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन है। सो विभाव क्या, विभाव मतलब होता है कि कि भगवान की क्वालिटीज, भगवान के पास टाइम्स सुन के और नाम सुन के एक्सटेसी अनुभव होती है, उसको विभाव कहते हैं, विशेष भाव नहीं। जैसी डिवोटी, अगर डिवोटी भगवान का मोर पंख भी देख लेगा वो भी होश हो जाएगा, उसको विभाव कहते हैं, क्योंकि उसको भगवान का स्मरण आ जाएगा। विभाव मतलब वो भाव, विभाव मतलब अनकंट्रोल्ड स्मरण भगवान, अनकंट्रोल कैसे कहेंगे हिंदी में,
अनियंत्रित, बिना रुकावट के,
अनियंत्रित,
यार हिंदी बहुत कमजोर है आपका, अनकंट्रोल्ड,
अनियंत्रित,
अच्छा शब्द नहीं आ रहा, अनियंत्रित थोड़े ना होगा यहाँ पर,
अविरुद्ध,
अनकंट्रोल्ड यहाँ पे इंटेंस के, इंटेंस मतलब यू डोंट हैव, इट इज ऐसे ऐसे इमोशन जो आप तो जो आपको ओवरवेल्म, ओवरपावर कर जाए, बेइंतहा कह सकते हैं। सो विभाव ये होता है भगवान के क्वालिटीज, पास्ट टाइम्स, नेम देखकर भगवान का स्मरण होना, कंटिन्यूस स्मरण होना, वो विभाव है। अनुभाव हो गया, जब भगवान का स्मरण होगा तो शरीर में लक्षण आएंगे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब अनकंट्रोल्ड स्मरण हो जाएगा, इंटेंस स्मरण हो जाएगा, तो शरीर में लक्षण आ जाएंगे, आंसू आ जाएंगे, कंप हो जाएगा, बेहोश हो सकते हो, रंग चेंज हो जाएगा, मर भी सकते हो, वो फाइनल स्टेज है, डिवोटी मर भी आते हैं, इतना ज्यादा लब आ जाता है कि वो सहन नहीं कर पाते, उनका हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसा भी होता है, वो अनुभव है। और मतलब यू कैन इमेजिन, मतलब अगर फिर उसके बाद क्या है, सात्विक भाव, सात्विक भाव है, सात्विक भाव ये होता है, क्या कहते हैं, जो भगवान से जो रिलेशनशिप, जो नहीं, सात्विक भाव मतलब, सात्विक भाव क्या होता है, आई जस्ट फॉरगॉट, माइंड में जो इमोशंस आ रहे हैं वो सात्विक भाव है, मन में जो भगवान के लिए भावनाएं आ रही हैं उनको सात्विक भाव कहते हैं। और व्यभिचारी भाव होते हैं जो, तो वैसे संस्कृत में, तो संस्कृत में व्यभिचार का मतलब क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट, व्यभिचार, वो भावनाएं जो कभी आती हैं कभी खत्म हो जाती हैं, जैसे यशोदा माँ है, उनके लिए कृष्ण की क्या भावना है, वात्सल्य भाव नहीं, मगर कभी कभी वो डर भी जाती हैं, कभी कभी वो कभी कभी उनको गुस्सा भी आ जाता है कृष्ण पे, है नहीं, तो वो क्रोध, डर, ये ऐसे भावनाएं जो कभी, जो समुद्र की लहरों की तरह आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, इनको कहते हैं व्यभिचारी भाव। नहीं, व्यभिचारी भाव ठीक, फिक्स नहीं है व्यभिचारी भाव। और लास्ट है स्थायी भाव, स्थायी भाव मतलब जो फिक्स है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यशोदा माँ का कृष्ण के लिए स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य, गोपियों का भगवान कृष्ण के लिए स्थायी भाव क्या है, माधुर्य भाव। सो ये चार पांच तरह के भाव जब मिलते हैं, जैसे जब आप दूध, मक्खन, घी, शहद, पानी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, कर्पूर मिला दोगे तो पंचामृत बन जाएगा, तो अमृत बनेगा नहीं, उसी प्रकार जब पांचों भाव मिलेंगे तब रस आएगा। सो रस जो है वो कोई चीप चीज नहीं है। तो ये जो महान भक्त हैं, भीष्म, कपिल, सुखदेव गोस्वामी, ये सब भगवान की सीक्रेट जानते हैं। सीक्रेट क्या है, वो सीक्रेट जानते हैं, वो सीक्रेट क्या है वो बताएंगे, मगर क्यों जानते हैं, क्योंकि रस अनुभव कर रहे हैं। वो विश्व ठाकुर लिख रहे हैं, आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव किए जाते हैं अनुभव। आनंद विभोर मतलब विभोर शब्द हो गया एक्चुअली, विभोर, विभाव मतलब विभोर हो जाना, भगवान के गुण सुन के, नाम सुन के। तो आनंद विभोर मतलब जो रस का आस्वादन कर रहे हैं वो भगवान की सीक्रेट समझ सकते हैं। तो क्या सीक्रेट है, तो पहली सीक्रेट बता रहे हैं, वो तीन सीक्रेट बता रहे हैं यहां पर। तो क्या सीक्रेट है भगवान की, प्रभुपाद कह रहे हैं यहां पर, भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। तो पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं यशोदा मां और अर्जुन का। अर्जुन का रथ कौन चला रहा था, पार्थ सारथी, नहीं पार्थ सारथी। और यशोदा माँ ने कृष्ण को बांधा था। तो पहली सीक्रेट यह है, इन दो लीलाओं से पता लगता है हमें कि भगवान की इन महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीन होकर प्रकट हो जाती है। और भगवान की महिमा यह एक और लक्षण है। भगवान की पहली सीक्रेट यह है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। यह पहली सीक्रेट है। जो स्वयं स्वतंत्र हैं वो अपने भक्तों के परतंत्र हो जाएंगे, जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बड़े बड़े योगी ज्ञानी मुनि फेल हो जाते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं 14 चैप्टर में, परम अचिन्मन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर योगी ज्ञानी करोड़ों वर्षों तक चिंतन करते रहते हैं आपका, फिर भी एक भी सीक्रेट नहीं समझ पाते कुछ भी नहीं समझ पाते हो, कुछ हाथ लगता ही नहीं। तो शाओ घाती नाम, वो क्या है, वो तो ऐसे ही है जैसे कि भूसे को कूट रहे हैं, धान थोड़े ना निकलेगा वहां से। तो मेडिटेशन, योग, पतंजलि, चक्र वक्र, ये सब भ्रम है। महाप्रभु कह रहे हैं सब भ्रम है। अगर भगवान को जानना है तो वो तो एक ही तरीका है, भगवान के भावों को जानना है तो तरीका है अनुभव। अनुभव मतलब प्रेम और रस। अगर नहीं पता तो भक्तों से पूछो जिनके पास रस है, जो हम सुन रहे हैं उसमें क्या है। इसलिए भागवतम के बारे में लिखा है, शुरू में भागवतम के पहले स्कंद के दूसरा श्लोक है, उसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या श्लोक है वो, निगम कल्प तरूर गलितम फलम स्यात् अहो रस भुवि भाव का। प्रभुपाद उसके पपट में लिख रहे हैं कि भागवतम ऐसा शास्त्र है जो बद्ध जीवों को वो रस दे सकता है जो मुक्त जीव अनुभव कर रहे हैं। अनुभव शब्द आ रहे नहीं आ रहे, जो अनुभव कर रहे हैं भीष्म सुखदेव, वो आप भी सेम रस अनुभव कर सकते हो अभी इसी पोजीशन में विदाउट उस प्लेटफॉर्म पे जाए। ये भागवतम है। सो हमें पता लग रहा है नहीं लग रहा है, अभी बताएंगे। हमें पता नहीं लग गया, भगवान की सीक्रेट पता नहीं लग गई कि भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। और सुनने में अच्छा भी लगता है, लगता है नहीं लगता है। सो ये तो सीक्रेट रिवील्ड ही नहीं थी गीता में, तो कुछ है ये तो है ही नहीं, वो तो निकालनी पड़ती है वहां से, ऐसे तो नहीं पता लगेगा। सो भागवतम में खोल दी गई, ठीक है, ओके, नाउ यू टेस्ट हु इज गॉड। हम क्वालिफाइड नहीं है जानने के कि भगवान कंट्रोल में आते हैं। और ये हम इसलिए क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि हम जैसी तो कमीने लोग हैं जो मतलब है ही है और क्या है। तभी तो ढोंगी भरे पड़े हैं सहज लोग वृंदावन में, गाली दे रहे हैं कृष्ण को, गाली देते हैं। हम आके भरी जाओ गाली देते हैं वो, हाय कन्हैया इस साले को तो मैं जानता हूँ, अपने ही व्रज का है, ऐसे बोलते हैं सीरियसली। मैंने कहा भैया मतलब दे थिंक कि
दोस्त है
वो, भागवतम पढ़ के हाँ कृष्ण हमारे
दोस्त,
हमारे कंट्रोल में, भगवान तो अधीन हो जाते हैं सेवा के, हम तो व्रजवासी हैं हमारे अधीन हो गए। क्वालिफाइड नहीं है वो, हम तो ये भी नहीं समझे कि हम भगवान के कंट्रोल में है, तो ये कैसे समझेंगे कि भगवान हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। बल्कि ये जान के तो हमारी हानि भी हो सकती है क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कंट्रोल करने की, नहीं हमें तो हमें क्यों अच्छा लग रहा है भगवान कंट्रोल में आते हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े डिवोटी हैं, इसलिए कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारे मन की बात हो गई ना, हाँ ये अच्छा है यार, अभी तक मुझे लग रहा था भगवान के कंट्रोल में होना है बड़े परेशान हो गया है, अब बात आई है कि हम भगवान को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी हमारी थोड़ी ना, हम महाराज कह रहे थे अभी व्यास पूजा में कि वी आर ऑल स्ट्रेंज, हम बहुत स्ट्रेंज हैं। तो इसलिए ये तभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन नहीं है ना। अंडर ग्रेजुएशन तो शरणागति है गीता में, भाई मेरी शरण लो, मेरे कंट्रोल में आओ, मेरी बात मानो। जब कन्विंस हो जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप है, हाँ भी ठीक है अब मैं भी तुम्हारे कंट्रोल में हो सकता हूँ। सो बट एट द सेम टाइम जो गीता पढ़ लेगा उसके लिए ये एक्सेसिबल है नॉलेज। हम भागवतम के स्तर पे नहीं है, भागवतम परमहंसों के लिए। ये सीक्रेट तो आप गीता पढ़ के मेडिटेशन करो करोड़ों साल प्योर हो तब पता लगेगा हार्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यासदेव ने ये हम जैसे डिवोटीज के लिए जो कि परंपरा में आ रहे हैं उनके लिए ओपन कर दिया। अब वो ही रस अनुभव कर सकते हो, वो ही अनुभव को अनुभव कर सकते हो जो वो लोग कर रहे हैं। सो पहली सीक्रेट यह है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। एक्चुअली वो अधीन होना चाहते हैं, ये सीक्रेट है। वेद गुह्यतमम। तो एक्चुअली मैं ऋग्वेद में पढ़ रहा था, वो ऐसे ही लाइब्रेरी में था तो पढ़ रहा था खोल के, तो ऋग्वेद में एक स्तुति है, पता नहीं कौन ऋषि मुनि कर रहे हैं, तो उनमें स्तुति में भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि ओ माय लॉर्ड यू लॉन्ग टू मीट योर डिवोटीज। भगवान का बड़ा मन करता है कि मैं कब अपने भक्तों से मिलूंगा, भगवान का बड़ा मन करता है कि कब मैं अपने भक्तों के ऑर्डर्स पे काम करूंगा, वो मन करता है। भगवान का बड़ा मन करता है कि कब गोपियां मुझे कहेंगी कि बैठ जाओ कृष्ण, कब नंद बाबा कहेंगे मेरी चप्पल उठा के लाओ। दैट्स व्हाट ही क्रेव्स फॉर, वो क्रेविंग है भगवान में। सो अब ये चीज आपको चैतन्य चरितमृत में मिलेगी, इसलिए चैतन्यमृत क्या है, सुपर स्पेशलाइजेशन। यू सी देयर इज अ डिफरेंस। गीता में आपको पता लगेगा हमें भगवान के कंट्रोल में होना है, भागवत में पता लगेगा कि भगवान अपने डिवोटीज के कंट्रोल में हो जाते हैं। चैतन्यमृत से पता लगेगा कि भगवान को क्रेविंग है अपने डिवोटी से कंट्रोल में होने की। क्रेविंग कैसे कहेंगे, लोभ, लोभ लालसा है, भगवान को लालसा है कि मैं कब अपने डिवोटी से कंट्रोल में होगा। सो वो सुपर स्पेशलाइजेशन है चैतन्य चरितमृत। यूसी तो एक स्टेप है, आप डायरेक्टली पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो एक रियलाइजेशन प्लेटफॉर्म होती है। ऑफकोर्स आप टेस्ट कर सकते हो, बट देयर इज अ प्लेटफॉर्म। सो ये पहली सीक्रेट है। सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पथ पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। ये दूसरी सीक्रेट है भगवान की, कि सुखदेव गोस्वामी और कुमार जो है वो, तो वो दोनों के दोनों ब्रह्म ज्ञानी थे, सुखदेव गोस्वामी भी और ब्रह्मा जी के चार पुत्र ब्रह्म ज्ञानी थे, मगर जब भगवान को देखा उन्होंने, भगवान के बारे में सुना, इमीडिएटली अपना भ्रम ज्ञान भूल गए, उसको कूड़े में डाला उन्होंने और डिवोटी बन गए, उनको प्रेम समझ आ गया। सो भगवान की दूसरी सीक्रेट यह है कि भगवान जीवों को अपने प्रेम के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा उनको फंसा लेते हैं। ये दूसरी सीक्रेट है कि कृष्णा अपने डिवोटीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कृष्णा वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट पीपल, क्योंकि कृष्ण का मतलब ही आकर्षण। सो ऐसा नहीं है कि भगवान खड़े हैं मेरे तरफ, आकर्षित हो जाओ मैं बैठा हूं, ऐसा नहीं है। भगवान बहुत सारे प्लान्स रचते हैं कि जिससे लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। सो दैट्स ही वांट्स टू बी विद पीपल। द पॉइंट, कृष्णा इज नॉट अ लोनर। लोनर समझते हो? लोनर नहीं, अकेले रहने पसंद नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बी सराउंडेड बाय पीपल विद डिवोटीज, तो वो इस तरह से प्लान करते हैं। दूसरी सीक्रेट है, इसलिए भगवान आगे प्रीचिंग करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं ही रिक्लेम्स पीपल, चलो भाई मेरे धाम आओ। तो कोई कहेगा अभी आप क्यों बुलाना चाहते हो अपने धाम, क्या इंटरेस्ट है आपको? नहीं क्यों आवला। सो कृष्णा कहते हैं नहीं, बिकॉज क्योंकि मेरे हृदय में कहीं ये इच्छा छुपी हुई है, मेरे अंतर हृदय में एक इच्छा है कि मैं तुम सबके साथ होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विद यू ऑल। प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा इज सुप्रीम इंजॉयर बट स्टिल ही फील्स लैक ऑफ एंजॉयमेंट विदाउट हिज डिवोटीज। भगवान ही है ये, भगवान के गीता में तो भगवान ने कहा मैं परम भोक्ता हूं, नहीं भोक्ता नाम है तब से मैं सुप्रीम इंजॉयर हूं, मगर भागवत में भगवान बता रहे हैं मैं सुप्रीम इंजॉयर होते हुए भी कहीं ना कहीं मेरे हृदय में अपने डिवोटीज के बिना मैं एंजॉय नहीं कर पाता। ये सीक्रेट हो गई नहीं हो गई? ये एन ऑर्डिनरी आदमी को समझ नहीं आएगा, वो कहेगा भगवान को क्या जरूरत है हमारी, भगवान तो भगवान है, भगवान को क्या सेवा की जरूरत है, नहीं भगवान का तो सब कुछ है, यही कहते हैं ना लोग। बट कृष्णा वॉन्ट्स कि ही इंजॉयस, जैसे पेरेंट्स के पास सब कुछ है बट फिर भी वो क्रेव करते हैं नहीं बच्चे का एंजॉय करने में, दे ही कैन एंजॉय एवरीथिंग देमसेल्व्स। दूसरी सीक्रेट है, ये दूसरा अनुभव है। और तीसरा अनुभव है भगवान तथा, भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध हो जाता है। ये कौन सा श्लोक है? मैं अपने भक्तों को अपने संकट में डालता हूं, ये तीसरा सीक्रेट विचार है भगवान का। भगवान अपने भक्तों को, भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों को विपत्ति में डालते हैं। दैट्स सीक्रेट, वो गीता में नहीं भगवान ने बताया, मैं विपत्ति में डालता हूँ, सो भाग जाते वहां से, चलो भैया टाटा, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन है। सो भगवान के हार्ट में एक विचार है कि भगवान चाहते हैं ना हमसे डीलिंग करना, हम चाहते हैं कि हम हमारे से लव हो, तो हमारे से हम भगवान हमें भगवान से लव प्रोड्यूस हो जल्दी, भगवान जल्दी भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चलो अगले जीवन में कर लेंगे, भगवान चाहते हैं अभी हो नहीं। तो जो जो बच्चे चले जाते हैं नहीं हॉस्टल पढ़ने के लिए, तो बच्चे एक महीने बाद फोन करें, मम्मी पापा कहते हैं यार ये हफ्ते में एक फोन कर लिया कर, नहीं ऐसे होता है, नहीं होता है क्या, पैसे भेज रहे हैं हम, फोन कर लिया करो, एक महीने बाद क्यों कर रहे हैं, नहीं। सो डिवोटीज हो शायद चाहते हो कि चलो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, अगले जीवन में कर लेंगे, भगवान चाहते हैं कि अभी हो, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मीट अस मोर देन वॉट वी वॉन्ट टू मीट हिम, ही हैज मोर डिजायर टू मीट विद अस। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तीसरी सीक्रेट यह है कि कृष्णा अपने डिवोटीज को विपत्ति में डालेंगे। ये कौन सा श्लोक है, फेमस है, हाँ या प्रभुपाद ने बहुत बार कोट किया, बहुत बार कोट किया भागवतम से श्लोक है, यस्याम अनुग्रहानामि हरिष्ये तद् धनम शनैः, कि जिससे मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ, उसका सब कुछ छीन लूंगा मैं। अबे अभी ये अंडर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा सकते, वो कोर्स ही छोड़ देगा, उसका छीन लूंगा मैं, उसको एक प्रॉब्लम लगेगी, मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध शुद्ध हो जाता है वो, क्योंकि जब तक आपकी अटैचमेंट्स नहीं हटेंगी तब तक आप भगवान को अनुभव नहीं कर सकते, असंभव है वो, जितनी अटैचमेंट हटेंगी उतना अनुभव कर सकते हो, और अटैचमेंट्स हम छोड़ने को तैयार नहीं है, हम तो कीड़े हैं ना
मल में,
वो निकालोगे तो दोबारा घुस जाएगा उसमें, चाहे वो मल चाहे वो कीड़ा कन्विंस्ड भी है कि टॉयलेट खराब है फिर भी वहीं जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही हैं, बहुत मुश्किल है से अटैचमेंट्स को छोड़ना, इम्पॉसिबल है, मतलब जब छूटती है तो दर्द भी होता है, वो आप लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप लोग ग्रस्त हो ना, आपको पता ही नहीं अटैचमेंट तोड़ना क्या होता है, मतलब वो इम्पॉसिबल है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अटैचमेंट तोड़ना क्या होता है, वो तो हमें पता है कि अटैचमेंट तोड़ना क्या होता है, जो ब्रह्मचारी होते हैं सन्यासी होते हैं, और बहुत बहुत पेनफुल भी होता है कभी कभी। सो पता नहीं कौन था, जब कई फुल टाइम डिवोटीज कहते हैं कि जब वो घर छोड़ के चले आते हैं ना, तो ऐसी मतलब बैठे बैठे ऐसे ही रोना आ जाते हैं उनको, अपने आप आंसू आ जाते हैं, कहते हैं भाई रो क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो अटैचमेंट्स टूट रही होती है, वो ग्रंथी जो है लग गई है ना, जब टूटती हैं तो दैट्स वेरी पेनफुल। सो वो अब भाई ब्रह्मचारी ने अपना भी छोड़ दिया, उसने विलफुली पेन ले लिया, अब जो गृहस्थ उनको क्या करेंगे भगवान, तो उनका फिर कुछ प्लान करके तोड़ेंगे किसी ना किसी तरह, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं उनका धीरे धीरे सब कुछ छीन लूं। ऑफकोर्स जरूरी नहीं है कि आपको दर्द हो, भगवान अच्छे सर्जन भी हैं, सर्जरी करते हैं, मगर एक एक्सपर्ट सर्जन बिना दर्द के भी सर्जरी कर सकता है। सो विपत्ति प्रॉब्लम में डालते हैं, मगर जरूरी नहीं कि पेन हो, है नहीं, इट्स अननेसेसरी पेन हो, प्रॉब्लम है बट कभी कभी मजा भी आता है प्रॉब्लम में, ऐसा भी होता है नहीं, ऐसे बचपन में वो दांत नहीं हिलता था, दर्द तो होता है मगर मजा आता है उसमें, तो हिलाते रहते हैं बच्चे, सबने हिलाया होगा, या जैसे डिलीवरी होती है बच्चा होता है तो दर्द तो हो रहा है मगर खुशी इतनी है कि वो दर्द सह जाती है, इतना इतनी खुशी होती है बच्चा होने की कि वो एक और बच्चा करने के लिए तैयार हो गई, वो भूल गई क्या दर्द हुआ था। दैट्स एक डिलीवरी के पेन से ज्यादा पेन कोई होता ही नहीं संसार में, कोई पेन नहीं है। सो व्हाट डू यू सी, शी फॉरगेट्स कि शी इज हैप्पी, सो दैट्स अ पॉइंट। तो विपत्ति का मतलब जरूरी नहीं कि पेन हो, भगवान सर्जरी विदाउट पेन भी कर सकते हैं। सो कृष्णा मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ कुछ भैया सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी तो करनी पड़ती है ना, या तो बात मान लो भैया, भगवान भी कहते मान ले भाई, नहीं मानने को तैयार है, सो फिर ही हैज टू डू समथिंग, ही हैज टू हेल्प, ही हैज टू हेल्प स्लोली एंड स्टेडीली, अधिकार के अनुसार हेल्प करते हैं, इमिजिएटली नहीं करते। अगर भगवान अभी भगवान कहे चलो अभी इसको इमिजिएटली शुद्ध करना है, इसके घर में आग लगा दो, इसकी फैक्ट्री बर्बाद कर दो, इसके बच्चे मर जाए, तो आप तो भैया आप तो कहोगे हो गया भैया मैं जा रहा हूँ छोड़ के, टाटा बाय बाय, कहाँ फंस गया मैं, कहाँ, इससे अच्छा तो दुर्गा देवी की भक्ति कर लेते। कृष्णा विल नॉट डू लाइक दैट, क्योंकि हम रेडी नहीं है उसके लिए। मतलब मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, कृष्णा ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा करते नहीं है, ऐसा नहीं है छोटे मोटी बन जाते हैं सबके बच्चे मर जाते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है लॉस में आता है, इट डजंट डू दैट, बट आई एम गिविंग एग्जांपल कि कृष्णा जब सर्जरी करेंगे तो हमारे अधिकार के अनुसार ही करेंगे, जितना हम उसको टॉलरेट कर सकेंगे, जितना जिससे हम सीख सकें, हम डर ना जाएं, ओवरवेल्म ना हो जाएं। ही इज़ अ बेस्ट टीचर, नहीं टीचर भी तो बेस्ट टीचर है, टीचर की तो पढ़ाना आता है बच्चों को, शैतान बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, दोनों ही पास होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्त का भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित होते हैं। यू सी, संबंध किस पे आधारित है? डीलिंग्स पे, मेटेरियलिस्टिक संबंध। और ये भोग भौतिक संबंध साधनों पर निर्भर करता है। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तब भगवान के प्रेम भाव की ओर शत प्रतिशत आकर्षित हो जाते हैं। ये जो भौतिक संबंध है किस पे बेस्ड है? भौतिक डीलिंग्स पे। भौतिक डीलिंग्स किस पे बेस्ड है? भौतिक चीजों पे। चीजों पे तो बेस्ड है, हम अपने वाइफ को साड़ी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो बच्चे अपने पापा को कुछ खाने को दे रहा है, चीजों की तो जरूरत है डीलिंग्स करने के लिए, और डीलिंग्स से रिलेशनशिप हो जाएंगी, तो भगवान क्या करेंगे? वहां चीजें छीन लेंगे, ना डीलिंग्स होंगी, ना रहेगा बास, ना हो जाएगी, आप करोगे क्या? वो अपने आप ही छोड़ देगा आपको, भैया पैसे ही नहीं है, सबसे पहले आप पैसे जाए आपको रिश्तेदारी छोड़ेंगे यार, ना काम का ना काज का, सब चल निकल जाए यहां से, बस ठीक है, आपकी आसक्तियां टूट गई, खत्म हो गई। श्रीमद् भागवत में आता है जो आपको जो वो नहीं था आपको क्या कहते हैं आपके कौन थे आपके जड़ भरत, जड़ भरत अपने घर में रहते थे, उनके चाचा थे, उनके नेफ्यू थे, सब थे, तो वो बड़े परेशान थे, कुछ काम नहीं करते थे, जड़ भरत ना कुछ काम करते ही नहीं थे, तो उनके चाचा नेफ्यू ने सबने परेशान होकर बोला तू निकल जा यहां से, काम का ना काज का, सौ मना ना, उसको निकाल दिया वहां से, भागवतम में आता है। तो जड़ भरत बहुत खुश हुए, ने कहा चलो भैया आखिरी आसक्ति थी पड़ा हुआ था मैं, वो भी भगवान ने मुझे निकाल दिया, आई एम वेरी हैप्पी। एक अलवार भी थे पता है साउथ में, कौन थे, पोयगी अलवार, अलवार मतलब महान संत थे साउथ इंडिया के, तो वो ऐसे ही जा रहे थे, तो ऑफकोर्स महान संत थे तो एक धोती थी एक शॉल था बस, जा रहे थे, गरीब थे, तो जाते 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 सो भगवान के कीर्तन कर रहे थे, तूफान आ गया, तूफान आ गया बहुत तेज, तो उन्होंने देखा कहीं छुपने की जगह, कहीं छुपने की जगह नहीं थी, खेत में थे ना, पेड़ था कुछ भी नहीं, तो जाने लगे इतनी देर तूफान आ गया, उनका शॉल उड़ गया, मतलब शॉल, अब तो मतलब शॉल भी नहीं, अब तो उसमें कांटे चुभ रहे हैं, मतलब धूल वूल आ रही है ना, ठंड भी लग रही है, बारिश शुरू हो गई, तो वो अपना शॉल खींच रहे हैं, शॉल उड़ गया वहां से, पूरा उड़ गया, फिर वो आगे भागने लगे, जल्दी भागने लगे शेल्टर ढूंढने के लिए, बारिश आ गई, बिजली लटकने लगी, उनकी धोती भी उड़ गई, इतनी तेज हवाई धोती उड़ गई, और कोई भी वस्त्र नहीं, ऐसे ही, तो पूरा बारिश हो रहा है, तो पोएगी अलवार वहां पे भगवान की स्तुति गाने लगे, ये कृष्णा आप कितने मर्सीफुल हैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था मगर मैं इससे अटैच था, दो कपड़ों से, तभी तो मैंने अपने पास रखा हुआ है, आपने वो भी छीन लिया, और पूरी रात कीर्तन करते रहे भगवान का, फिर भगवान ने फिर उनको दर्शन दिए, भगवान ने कहा मैं बहुत खुश हूं तुमसे, क्योंकि तुम मेरे सीक्रेट विचार समझते हो, वेद गुह्यतमम, तुम मेरा माइंड समझते हो, तुम्हें मुझसे प्रेम है, तभी तो समझ गए, प्रेम नहीं होता तो तुम छोड़ देते, क्रिटिसाइज करते मुझे, तो ये एविडेंस हो गया ना कि यू अंडरस्टैंड मी, आई एम हेल्पिंग यू. सो ये महान भक्त होते हैं और उन लोगों को प्रेम मिलता है, वो लोग शत प्रतिशत शुद्ध होते हैं. तो भगवान इसलिए धीरे धीरे चीजें, भगवान चीजें छीनेंगे, मतलब ऐसे नहीं छीन लेंगे, भगवान आपकी लाइफ सिंपल कर देंगे. सिंपल हो भी गई नहीं हमारी, सिंपल तो हो ही गई है, मतलब अननेसेसरी शॉपिंग बंद हो गए, अननेसेसरी पैसे वेस्ट कम हो गए, सिंपल होती जा रही, नहीं होती जा रही है. तो छीनने का मतलब ही नहीं है कि भगवान टेररिस्ट की तरह आपको पकड़ के सब छीन छान के रोड पे फेंक देंगे. ऐसा नहीं है. हील मेक योर लाइफ सिंपल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वो भगवान को करना आता है. धीरे धीरे आपको कन्विंस कर देंगे अंदर से, यार ये सब बेकार है, आप खुद ही छोड़ दोगे, खुद ही छोड़ दोगे अपनी फ्री विल से, थोड़ा यार सिंपल कर लो, क्या करना है. सो इस प्रकार भगवान पतित आत्मा को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं. भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं. भगवान जो प्रॉब्लम्स देते हैं वो पाप कर्मों से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बिल्कुल अलग है. भगवान वो पर्सनली हैंडल करते हैं, भगवान अपने डिवोटीज की लाइफ को. इसलिए जब डिवोटी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो प्रॉब्लम्स हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जब प्रॉब्लम आती है तो हम डिफेंड करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं. कोई आपको इल्जाम लगाएगा तो डिफेंड करोगे, कोई आपको इल्जाम लगाएगा एकदम से आप डिफेंसिव मोड में चले जाओगे, और एकदम से आप अपने एक्सक्यूजेस देने लगोगे, नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं मतलब ये ऐसे गलत कह रहे हैं. मगर डिवोटी ऐसा नहीं करता, डिवोटी डिफेंसिव मोड में नहीं आता, डिवोटी उस चीज से समझने की कोशिश करता है कि भगवान मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं. जैसे अलवार की जो धोती उड़ गई, शॉल उड़ गया, तो वो डिफेंसिव मूड में नहीं आए, वो ये सोचने लगे कि भगवान क्या सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो कृपा ही सोचेंगे, और क्या सोचेंगे. तो वो समझ गए इमीडिएटली. सो भगवान ऐसे भगवान अपने भक्तों के इस तरह डीलिंग करते हैं कि वो शुद्ध हो जाते हैं. जैसे पॉटर पॉट नहीं बनाता, तो जब पॉटर जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो बहुत सॉफ्ट हाथ चलाना होता है, नहीं बहुत स्किल्ड, बहुत ध्यान से. अब आप उधर उधर करोगे तो टूट जाएगा. सो भगवान इस तरह हमारी लाइफ को शेप करते हैं, और वो काल का चक्र चलता रहता है. और भगवान धीरे धीरे हमें सुंदर सा पॉट बना देंगे. उसमें हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर लगे, प्रेशर तो लगता ही है, बट कृष्णा कैन मेक इट, ही स्किल्ड पॉटर. सो ये भगवान के सीक्रेट है. वेद गुह्य तमम अस्य अनुभावम भगवान वेद गुहेतमम शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान के पिलन पर. सो बहुत अच्छा वर्ष है, तीन सीक्रेट बता दी भगवान की, दैट वी शुड रिमेंबर. हरे कृष्णा. कुछ पूछना है, कुछ कहना है?
हमने कहा कि हमें तो ये नहीं करना चाहिए वैष्णव, कोई हमसे पूछे कि हम क्या है तो पतित कहेंगे तो
कुछ बोलने के लिए तो उसको बोलना पड़ेगा कि हम डिवोटीज हैं, बट हार्ट में नहीं सोचना चाहिए. उसको थोड़ा बोलेंगे मैं पते तू, तुम कौन, मैं पते तू, ये ले और थप्पड़ मार. लोग तो ऐसे ही है. क्या कह रहे हो? उसने
गौतम बुद्ध जो है वो भगवान का अवतार है, वो कहाँ मेंशन है?
भागवतम में. और तो जो भगवान के दश अवतार है उसमें से एक है गौतम बुद्ध. और क्या भागवत के फर्स्ट कैंट, आपके फर्स्ट कैंटो है ना, उसमें फोटो बनी हुई है दश अवतारों की, आप देखना शुरू में, फर्स्ट चैप्टर में ही है, प्लेट भी है उसकी.
जैसे आपने बताया डिफरेंट डिफरेंट अवतारों में अलग अलग लोग आएंगे और भगवान वैसी क्वालिटी से लोग लेके आते हैं, बट एक्चुअली ये तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, हम ऐसे, हमने अपनी स्टोरी हम ना रखी, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं ऐसा हूँ, बट एक्चुअली अगर आत्मा के लेवल पे देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो तो निर्गुण है.
नहीं, निर्गुण का मतलब नहीं कोई गुण नहीं है, ये तो मायावादियों का की सही है.
कोई कुछ नहीं है
आत्मा, तो निर्गुण का मतलब होता है कि कोई भौतिक गुण नहीं है, मगर आध्यात्मिक गुण तो है, वो हम भूल गए. हमारे सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है,
आत्मा की भी.
हाँ, अभी तो हम खिचड़ी है, अभी हमारी आत्मा की आइडेंटिटी, संसार की आइडेंटिटी, मन की आइडेंटिटी सब मिल के खिचड़ी है, मगर जब हम प्योर जाएंगे तो हमारी एक आइडेंटिटी होगी, हमारा एक फॉर्म होगा. यही तो वैष्णविज्म और मायावाद में फर्क है, मेजर डिफरेंस. उनके हिसाब से निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. निर्गुण मतलब डेड, टेबल में कोई गुण नहीं है, कोई लाइफ में तो कोई गुण तो होगा, कुछ तो होगा ना,
कोई स्वरूप तो होगा,
कुछ तो होगा, लिविंग है भाई वो, लिविंग का मतलब ही क्वालिटी, सो वो स्पिरिचुअल क्वालिटीज है. तो भगवान स्पिरिचुअल क्वालिटीज देखकर उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर देंगे आपको.
वो हमारा स्वभाव होगा,
वो आपका स्वभाव होगा, रियल स्वभाव, रियल रियल नेचर.
मतलब कहीं ना कहीं हम वो चीज करके कभी कभी खुश होते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि वो हमारा स्वभाव है, जो दुनिया की बातों में आके फिर हम अपना वही करने लगते हैं.
हमारा वास्तविक स्वभाव कुछ है, जो कभी कभी हमें रिफ्लेक्शंस मिलती है फिर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं. ओके, और कुछ कहना है?
तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तब हमें
धीरे धीरे हमारा रियल नेचर आ जाएगा,
आ जाता है
रियल नेचर, सबका मैनिफेस्ट हो जाएगा. सो वृंदावन में राधा रानी के अलग नेचर है, ललिता सखी का अलग नेचर है. पढ़ो मधुमंगल कॉमेडियन है और ललिता सखी सीरियस है, वो उनका रियल वास्तविक नेचर है, इटर्नल नेचर यही है.
तो जब हम बच्चे होते हैं, जब बच्चों बच्चे होते हैं वो तो पूरे ही मतलब वो उनका स्वभाव बाद में बड़े होते होते चेंज
वो तो सब खिचड़ी है, वो तो
वो भी नहीं,
वो तो सब वो तो सब नेचर से है, वो तो खिचड़ी है, वो दैट्स मंडेन मैटेरियलिस्टिक. स्पिरिचुअल से कुछ लेना देना नहीं. ओके, दैट्स इट.
लव अपने डिफरेंट होता है ना,
लव तब अनुभव होता है जब आनंद होता है, जब रस का अनुभव होता है तब प्रेम मिलता है. रस मतलब आनंद,
रस हो तो लव हो,
रस पांचों रस मिलेंगे तब लव प्रकट होगा उसमें से. और रस मतलब आनंद की अनुभूति, अनुभाव विभाव विचारी भाव सात्विक भाव, तब पंचामृत मिलेगा और उसमें से अमृत प्रोड्यूस होगा. इट्स नॉट दैट इजी.
भगवान गीता में यूज करते हैं व्यभिचार निवारण,
वो तो अलग सेंस में किया है. अव्यभिचारी नहीं. ओके, जय श्रील प्रभुपाद की जय.